समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा की संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Mukesh. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
जी हाँ, स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत दो उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया के साथ भारत ने इतिहास रचा, ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना।
Visiting Singapore, President Tharman Shanmugaratnam says both countries on new trajectory of comprehensive strategic partnership.
भारत ने इजराइल हमास युद्ध विराम और बंधक मुक्ति समझौते का स्वागत किया, कहा समझौते से गजा में मानवीय सहायता की निरंतर आपूर्ति संभव होगी।
Prominent candidates of major political parties to file the nominations for Delhi Assembly elections today.
ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मेक्सिको के मैगुएल एंजेल पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we will talk about Startup India.
जी हाँ, आज भारत स्टार्टअप इंडिया की 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस योजना का उद्देश्य देश में स्टार्टअप उद्यमियों को बढ़ावा देना और नवाचार तथा उद्यमिता के लिए अनुकूल, सुदृढ़ और समावेशी माहौल बनाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश में स्टार्टअप की संस्कृति को प्रोत्साहन दिया है। इस परिवर्तनकारी पहल ने पिछले 9 वर्षों में अनगिनत युवाओं को सशक्त बनाया है और उनके नवोन्मेषी विचारों को सफल स्टार्टअप में बदला है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों ने कारोबार में सुगमता पर ध्यान केंद्रित किया है, संसाधनों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित की है और हर मोड़ पर स्टार्टअप का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्रों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की सफलता के कारण आज देश गतिशील, आत्मविश्वासी और भविष्य के लिए तैयार है।
Yes, Mukesh, and as the world grapples with the mounting challenges of climate change, the urgency to foster innovative solutions has never been more pronounced. Yet, despite the rhetoric from the conglomerates and investors about sustainability, the reality on the ground often falls short of expectations. National Startup Day is an annual observance in India dedicated to recognizing and promoting the vibrant startup ecosystem. And this day aims to mark the spirit of entrepreneurship to boost economic growth, innovation and job creation. Additionally, it acts as a reminder of the government of India's dedication to encouraging and observing the startup community's noteworthy contributions to the progress of the country.
बिल्कुल अभिषेक, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस उद्यमिता और नवाचार की भावना का सम्मान करता है। ये आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति में स्टार्टअप के योगदान को मान्यता प्रदान करता है। ये दिन उभरते व्यवसायों के लिए एक सहायक व्यवस्था को भी पोषित करने के महत्व पर बल देता है। जैसे जैसे स्टार्टअप का परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, वैसे ही राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस दुनिया भर के उद्योगों के भविष्य को आकार देने में रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प के मूल्य का स्मरण कराता है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई थी। राष्ट्र निर्माण, सामाजिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता में योगदान देने वाले स्टार्टअप्स की पहचान पर ध्यान और उन्हें बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया था और उसी वर्ष 16 जनवरी को भारत ने पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया था।
Yes, and when the Startup India scheme was introduced in 2016, the idea of recognizing startups gained interest. And since then, the Indian government has launched a number of programs aimed at encouraging innovation and creating a welcoming atmosphere for new businesses.
और अब शीघ्र अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानने का कि उनके पास क्या खास है, तो इस क्रम में सबसे पहले कहां चलेंगे?
Yes, I think we'll start off with a story about from Tamil Nadu, Mukesh.
जी हाँ, और तमिलनाडु का फसल उत्सव पोंगल पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और परिवार के लोग मिलकर सूर्य और मवेशियों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये प्रकृति के आशीर्वाद का सम्मान करने और हमारे जीवन में समृद्धि का स्वागत करने का समय है, तो आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
The four-day Pongal event is more than just a festival in Tamil Nadu. Usually falling in mid-January and marks the beginning of sun's northward journey, Uttarayanam, which is considered a time of abundance and prosperity. The festival is dedicated to the sun god, nature and farm animals, and it has deep cultural and agriculture significance. Bogi, the first day and the pre-preparation day of Pongal, is a day for cleaning, discarding old items and preparing for the new. People burn old clothes, wooden items and other waste in a ceremonial bonfire, symbolizing the removal of the old and welcoming of the new. It's also a time for people to decorate their homes with kolams made with rice flour, which was celebrated on the 13th of this month. The second day of Pongal, known as Thai Pongal, is the main day of festival, which was celebrated with much more fervor and devotion. On this day, that is on 14th of Jan, people cook the traditional Pongal dish made of freshly harvested rice along with milk, jaggery and ghee in an outdoor setting in a new clay earthen pot. When the rice boiled over earthen pots, people joyfully shouted in chorus chanting Pongalo Pongal, Pongalo Pongal, inviting prosperity into their lives. The dish boiled in a new clay pot until it overflows symbolizes prosperity and abundance. The sun god is worshipped for providing energy and helping with the agriculture harvest. The third day of Pongal, known as Matu Pongal, which was celebrated yesterday, is a festival which honors the animals, especially cattle, that play a crucial role in farming. On this day, cows, bulls and other livestock are decorated with colorful garlands and fed special food. In rural areas, there are often bull taming contests known as Jallikattu to celebrate the bond between farmers and their animals. Madurai, the ancient city of Tamil Nadu, was fully geared up for Jallikattu, and the world famous Avaniyapuram, Palamedu and Alanganallur Jallikattu was witnessed by lakhs of people, especially foreigners and tourists from other states. It's a traditional cultural game which symbolizes the valor and courage of the youngsters. Kanum Pongal, the fourth day and final day of Pongal, which is being celebrated today, is all about togetherness, bonding and reconnecting. Shanti Ramesh for Parikrama from Agashwani Tiruchirappalli.
और तमिलनाडु से अब चलते हैं पुदुचेरी और जहां पर कराईकल कार्निवल जो है वो शुरू हो चुका है, तो अभिषेक बताइए।
एब्सोल्युटली, कराईकल डिस्ट्रिक्ट इन पुदुचेरी इज बजिंग विद एक्साइटमेंट एज द मच अवेटेड कराईकल कार्निवल एंड फ्लावर शो बिगिंस टुडे एंड चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी हैज विल इनॉग्रेट दिस ग्रैंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोलैबोरेशन विद पुदुचेरीज आर्ट एंड कल्चर टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स एंड द फोर डे एक्स्ट्राविगेंजा सेट टू रन अंटिल जनवरी 19th प्रॉमिसेस to be a vibrant celebration at the Karaikal Sports Ground and various venues across the district. We have more from our correspondent Bibin Esnath.
The Karaikal Carnival is designed to promote tourism while offering a platform for artisans, musicians and folk artists to showcase their talents. The festivities will kick off with a colorful cultural roadshow this afternoon featuring professional and amateur performances, eye-catching floats and traditional costumes parading through the streets of Karaikal. The inaugural evening will feature a humorous debate followed by an enchanting musical night led by renowned Tamil playback singer and music director Pradeep Kumar. Over the next 3 days, a variety of programs including folk music, dance performances and sports competitions are set to captivate residents and visitors alike. Adding to the excitement, the carnival will host diverse activities such as the farm festival, food fair, dog and cat show, art and craft expo, boat race and a mini marathon. Beach and city cleaning drives along with the vibrant street decorations will create a festive ambience, making this year's carnival truly unforgettable. The grand finale on January 19th will be graced by Lieutenant Governor K. Kailash Nathan, who will preside over the valedictory ceremony. The closing night will feature a mesmerizing musical performance by celebrated South Indian playback singer Shweta Mohan, ensuring the carnival ends on a high note. This is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
और चलते हैं उत्तर प्रदेश. प्रयागराज का महाकुंभ संस्कृति और आध्यात्मिकता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की सशक्त पहचान बन रहा है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रयागराज इस महीने की 31 तारीख को हरित महाकुंभ की मेजबानी करेगा.
हरित महाकुंभ में देश भर से 1000 से अधिक पर्यावरण और जल संरक्षण कार्यकर्ताओं को एक मंच प्रदान करेगा, जहां वे प्रकृति, पर्यावरण, जल और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे. विशेषज्ञ प्रकृति के 5 तत्वों के संतुलन को बनाए रखने और लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के बारे में अपने अनुभव और जानकारी साझा करेंगे. इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के बारे में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के तरीकों के साथ साथ इन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे पर चर्चा की जाएगी. वहीं मेला प्रशासन महाकुंभ नगर क्षेत्र में प्लास्टिक और थर्मोकोल की बजाय कुल्हड़, दोना और पत्तल जैसे पर्यावरण अनुकूल सामग्री को बढ़ावा दे रहा है. वहीं सौर ऊर्जा का उपयोग और ई वाहन जैसे पर्यावरण अनुकूल परिवहन महाकुंभ 2025 की अन्य विशेषताएं हैं. अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज.
Yes, and one of Assam's most unique and historic festivals, Jonbil Mela, begins today near Jagi Road in Morigaon district, renowned for preserving ancient barter system. And the Tiwa community of Assam organizes this fair since 15th of century. We have more from a correspondent.
The three-day-long historic Jonbil Mela begins today with Agni Puja and community fishing. The main attraction of this Mela is barter system, where tribes from various hill communities like Khasi, Jayantia and Karbi exchanges goods like ginger, turmeric, fruits and various types of vegetables with the people of plains for rice, fish and other essential items. In this digital age, perhaps this is the only fair in India where barter system is still alive and where we cannot buy anything with money. The Gobha King organizes Rajdarbar at this Mela and collects symbolic taxes from the people. Assam government recognizes this cultural importance of this Mela by providing annual allocation to the traditional king. Aminul Hazeddar, Akashbani News, Guwahati.
और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस यानी यूडाइस प्लस की 2023-24 की नवीनतम रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डाला गया है. इसमें लगभग 100% सरकारी स्कूल अब बिजली, पेयजल, शौचालय और पुस्तकालय जैसी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित हो गए हैं. तो आइए सुनते हैं रिपोर्ट.
Bengal is home to 93,945 schools, with 82,307 being government-run. According to the report, 97.6% of government schools now have functional electricity connections and 99.6% are equipped with drinking water facilities. Almost all government schools, that is 99.9%, have functional toilet facilities, while 98.6% provide hand washing facilities. Furthermore, 93.6% of schools have libraries, book banks or reading corners. Education department officials have lauded the state's progress in infrastructure, noting that Bengal has surpassed the national average in several categories. Nevertheless, the report reveals that the state still has a long way to go in terms of achieving full digital infrastructure in its schools. Only 22.3% of all schools in the state have computer facilities, with government schools lagging at just 18.7%. While this marks a slight improvement from the previous year's 17%, the digital divide continues to be a major issue. 34.3% of schools with secondary sections have integrated science labs, a slight increase from 33.5% last year. The report also highlights Facilities for Children with Special Needs, CWSN. Shushmita Mondol, Akashbani, Kolkata.
The Indian Air Force, IAF, is all set to showcase a breathtaking aerial display during the Republic Day parade on the 26th of January this year. According to the IAF, a total of 40 aircraft will perform a flypast over the Kartavya Path, displaying precision and prowess in various formations. This year, India's best fighter aircraft and versatile machines in the IAF's arsenal, such as MiG-29, Rafale, Sukhoi 30, Jaguar, Apache, C-130, C-295 and C-17 will take part in the flypast, highlighting the extensive preparations made by the IAF for this year's Republic Day parade. Wing Commander Manish Sharma told Akashvani that 40 aircraft will participate in the Republic Day flypast over Kartavya Path, showcasing the strength and capability of the Indian Air Force.
I am Wing Commander Manish Sharma. On the occasion of 76th Republic Day parade, we are presenting the flypast comprising of 22 fighters, 11 transport aircraft and 7 helicopter aircraft operating from various bases. We are starting the flypast with Dhwaj formation comprising of 4 helicopters carrying national flag and the flags of all 3 services. The second formation is Baj formation comprising of 3 MiG-29s flying in Vic formation. They will be flying along with Indian Air Force contingent and it will culminate with 1 Rafale carrying out vertical chalry maneuver.
Flypast, the IAF marching contingent will showcase its indomitable spirit on the Kartavya Path. A total of 148 IAF personnel will take part in the marching contingent led by Squadron Leader Mahendra Singh. Talking exclusively to Akashvani, Squadron Leader Singh said, leading the contingent for the Republic Day Parade 2025 is a tribute to all air warriors who work tirelessly to protect the country.
I am Squadron Mahendra Singh Garati and leading the contingent for Republic Day Parade 25. It's my way to pay tributes to all the air warriors, each and every air warriors who work tirelessly to protect our skies and country. And let's make every Indian proud on Republic Day Parade.
Wing Commander Jaideep Singh highlighted that the band contingent consisting 72 musicians will participate in this year's parade. Among them, there will be 22 Agni Veers participating as musicians for the first time.
This year, we'll be showcasing 40 aircraft, which will be flying in 12 formations. There is a band contingent and there is a marching contingent, which is there. We'll have 12 formations, like I've already covered, consisting of fighters, transports and helicopters. Our marching contingent consists of 12x12 column, 144 personnel and 3 supernumerary officers and 1 parade commander will be there. The band contingent will have 72 musicians, out of which 22 are Agni Veers, who will be participating as a band for the first time, 22 musicians for the first time. So major aircraft that are participating in flypast, these we have fighters, MiG-29, Jaguars, Rafales and Su-30 which are there. And the other transport aircraft consists of C-17, our Netra formation which is there. There are Dorniers from Indian Coast Guard who are participating.
और अब खेल जगत की ताजा तरीन जानकारी लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं नवीन. नवीन बताएं क्या कुछ है आपके पास.
मुकेश, आज खेलों की दुनिया से मेरे पास खबर है खोखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट और हॉकी में. सबसे पहले हम खोखो के लिए आपको लिए चलते हैं. क्वार्टर फाइनल मुकाबले हैं जो कि कल खेले जाएंगे. भारत की पुरुष और महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. इससे पहले आज ग्रुप स्टेज मुकाबलों में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मलेशिया से होगा और इसके बाद भारतीय खोखो पुरुष टीम का सामना रात 8:15 बजे से होगा. ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो भारत के एन श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के मिगुएल एंजल की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है. इस जोड़ी ने आज पुरुष डबल्स में कजाकिस्तान के अलेक्सांद्र और नीदरलैंड के रॉबिन हॉसे की जोड़ी को आसानी से 6-4, 6-3 से हरा दिया. उधर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स से अच्छी खबर आ रही है. पीवी सिंधु और पुरुषों में किरण जॉर्ज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं. सिंधु ने आज जापान के मनामी सुइजु को और किरण जॉर्ज ने फ्रांस के एलेक्स लेनियर को पराजित किया. और आज ही देर रात पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना जापान की जोड़ी से होगा. हॉकी की बात करें तो राउरकेला में पुरुषों की एचआईएल प्रतियोगिता में दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला वेदांत कलिंगा लांसर से होगा. हॉकी इंडिया लीग का यह मैच आज रात 8:15 पर शुरू होगा. और महिला हॉकी इंडिया लीग में श्राची राट बंगाल टाइगर्स का सामना आज शाम 6:00 राउरकेला में ओडिशा वॉरियर्स से होगा. खेलों की दुनिया से इतना ही. वापस चलते हैं अभिषेक और व्यापार मुकेश के पास।
जी हाँ अभिषेक, अब बताएं कि व्यापार जगत में क्या कुछ चल रहा है।
एब्सोल्युटली, इन द बिजनेस न्यूज़ टुडे, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस टुडे कंटिन्यूड देयर पॉजिटिव मोमेंटम अमिड फेवरेबल ग्लोबल क्यूज़। द 30 शेयर इंडेक्स एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स एडवांस्ड 319 पॉइंट्स टू क्लोज एट 77,043। सिमिलरली, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 एडेड 99 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,312। बोथ इंडेक्सेस गेन 0.42% ईच। इन द ग्लोबल क्रूड मार्केट, Brent crude was trading over 0.3% down at $81.74 per barrel, and the WTI crude also fell 0.3% to trade at $79.78 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, the 24 carat gold was trading up at 79,330 rupees for 10 grams, while silver 999 fine is also trading up at 93,720 per kilogram when reports last came in. And now, all the news from the world of sports. But just before that, let's take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember scholar and social reformer Mahadev Govind Ranade, who died on 16th January 1901. He was among the founding members of Indian National Congress.
He also helped establish the Prarthana Samaj, the Pune Sarvajanik Sabha, and Maharashtra Granthottejak Sabha. He also edited a Bombay Anglo-Marathi daily, the Indu Prakash. He worked as a member of the Bombay Legislative Council, member of the Finance Committee, and judge of the Bombay High Court.
Born on 18th January 1842 in Nashik district, Ranade belonged to the first batch of students of University of Bombay. After completing his education, he joined as a subordinate judge at Pune in 1871. Ranade also led an active social and political life, and the British colonial authorities delayed his promotion to the Bombay High Court until 1895.
Ranade led the Indian social reform movement to humanize, equalize, and spiritualize the Indian society. In 1861, when he was still a teenager, Ranade co-founded the Widow Marriage Association, which promoted marriage for Hindu widows. Through the Prarthana Samaj, he championed upholding the devotional aspect of Hinduism while denouncing rigid social structures and customs.
He founded the Social Conference Movement, directing his social reform efforts against child marriage, caste restrictions on travelling abroad, and advocating widow remarriage and female education. He campaigned against the Parda system.
Ranade has been called the father of Indian economics for urging the British government to initiate industrialization and state welfare programs. Ranade inspired many other Indian social reformers, most notably the educator and legislator Gopal Krishna Gokhale, who carried on Ranade's reform work after his death on 16 January 1901. We salute the great Indian.
We also remember one of the most popular Indian authors of all time, Sarat Chandra Chattopadhyay, who died on 16th January 1938. He championed the cause of the women and oppressed castes. In one of his speeches, Chattopadhyay had underlined his philosophy towards writing.
Those who have given their all to this world and got nothing in return, the deprived, the weak, the oppressed, their pain has unlocked my lips.
Chattopadhyay also played a role in India's freedom movement. From 1921 to 1936, he served as the president of Indian National Congress, Howrah branch. His book, Pathe Dabi, is the story of a secret society which aims to free India from the colonial rule.
Its protagonist, Sabyasachi, is the leader of the organization. The story touches upon contemporary issues such as untouchability, orthodoxy, rich-poor divide, and the status of women in the society.
He used to visit villages and mingle with the villagers. The experience that he gathered was a reason of unique and elegant style of his literary works. The great writer passed away on 16th January 1938.
और अभिषेक, अब समय हुआ है उन महान हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले भारत के इतिहास में 16 जनवरी की तारीख देश की एक बेटी की उल्लेखनीय उपलब्धि की साक्षी है, जिसने अमरीका जाकर अंतरिक्ष यात्री बनने के अपने सपने पूरे किए थे। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उन्हें 2 बार अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की, और जिन्होंने 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष में दूसरी बार उड़ान भरी थी। हालांकि ये उड़ान उनकी अंतिम उड़ान साबित हुई थी, क्योंकि 16 दिन के अंतरिक्ष मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटते हुए 1 फरवरी को उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और चालक दल के अन्य 6 सदस्यों के साथ उनकी मौत हो गई थी।
प्रेम नजीर पास्ड अवे ऑन दिस डे 1989। ही वाज एन एक्टर नोन एज वन ऑफ मलयालम सिनेमाज डेफिनेटिव लीडिंग मैन ऑफ हिज जनरेशन। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। आवर पॉपुलर कल्चरल आइकन ऑफ केरला नजीर इज ऑफन रेफर्ड टू एज नित्या हरिता नायकन एवरग्रीन हीरो। नजीर बिगन हिज करियर एज अ स्टेज actor and made his film debut in the 1952 film Marumakal, and he took on the stage name Prem Nazir on the sets of his second film Visa Pinte Vili in 1952.
aur ab hum yaad kar rahe hain Ram Naresh Tripathi ko, aaj unki punyatithi hai. unhone hamesha rashtra prem ki kavitaen likhi. inhone kavita ke alawa upanyas, natak, alochna, hindi sahitya ka sankshipt itihas aur balopyogi pustakein bhi likhi. mahakavi pandit Ram Naresh Tripathi, he prabhu anand data gyan humko dijiye jaisa prerna dayi geet रचकर प्रार्थना के रूप में स्कूलों में छात्रों और शिक्षक गणों की वाणी में बस गए। ये वास्तव में साहित्य के आकाश के चमकीले नक्षत्र थे।
Helen Fola Shahade Adu was born on this day in 1959, known professionally as Shahade or simply Shahade. She is a Nigerian-British singer known as a lead vocalist of a band Shahade and one of the most successful British female artists in history. She is often recognized as an influence on contemporary music. Her success in the music industry was recognized with the honor of Officer of the Order of the British Empire in 2002, and she was made Commander in the 2017 Birthday Honors. Let's listen in to a hit track, Smooth Operator, and it's from her 1984 hit album, Diamond Life.
और हिंदी फिल्मों की एक ऐसी अभिनेत्री और टीवी कलाकार जिसने अपनी शालीनता से सभी का दिल जीत लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कामिनी कौशल की। आज उनकी जयंती है। इनका वास्तविक नाम उमा कश्यप था। फिल्मी नाम कामिनी कौशल चेतन आनंद ने उन्हें दिया था और इसी नाम से ये जानी गई। यूं तो कामिनी कौशल ने कई यादगार फिल्में की, किंतु फिल्म नीचा नगर और विराज बहू में निभाई गई भूमिका के लिए उन्हें खास तौर पर जाना जाता है। इन फिल्मों में निभाई गई भूमिका के लिए कामिनी कौशल को पुरस्कार भी मिले हैं। तो क्यों ना सबसे पहले शहीद फिल्म में जो उन्होंने काम किया है उसका एक डायलॉग सुन लेते हैं।
क्या ये सपने हैं? नहीं, नहीं, मैं तुम्हें देख सकती हूँ राम, मैं तुम्हें छू सकती हूँ राम। मुझे यकीन था तुम आओगे। देखो राम, तुम्हारी जुदाई में मेरा क्या हाल हो गया है। मेरी आंखों में हल्के पड़ गए हैं, मेरा मुंह पीला हो गया है। बोलो राम, तुम चुप क्यों हो? देखो देखो, मैं तुम्हारी शील हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं।
और कामिनी कौशल ने दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ कई फिल्में की हैं, और 1947 में बनी फिल्म जेल यात्रा में कामिनी कौशल ने नायक राज कपूर थे, जिनकी बतौर निर्माता निर्देशक पहली फिल्म आग भी थी, उसमें भी कामिनी कौशल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और उनकी फिल्म शबनम का ये गाना सुनते हैं।
मेरा दिल तड़पा कर कहां चला, इतना तो बता के जा, किसे खेल कहूं या प्यार कहूं मुझे।
Yes, and Kabir Bedi was born on this day 1946. He's an actor. His career has spanned 3 continents, covering India, the United States, and especially Italy, among other Western countries, in 3 media, film, television, and theater.
और आज ही हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार ओंकार प्रसाद नायर यानी ओपी नायर की जयंती है। अपने सुरों के जादू से आशा भोंसले और मोहम्मद रफी जैसे कई पार्श्व गायक और पार्श्व गायिकाओं को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने का काम उन्होंने किया था। उनकी फिल्मों के कुछ गाने सुन लेते हैं।
हरी भरी वादियों में जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है, इन हरी भरी वादियों में कभी ना कभी
लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर
लो 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 जी सनम हम आ गए।
तो श्रोताओं समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।